आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी। हम पढ़ रहे थे आग की पुस्तक का पाठ दो, जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी, और इस कहानी में उन्होंने दिखाया कि आज़ाद होने के बाद भी भारतीयों की जो मानसिकता रही वो कितनी गुलामी वाली रही, या फिर वो अभी भी अपनी इज्जत से, अपनी शान से ज़्यादा अंग्रेज़ों की शान बढ़ाने में विश्वास रखते थे। और ये जो पत्रकारिता जैसी चीज़ें हैं जिसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, वो भी कितनी व्यावसायिक हो चुकी है, सारी चीज़ें पैसे के लिए कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि एक अंग्रेज़ की मूर्ति की नाक लगाने के लिए कितने जो जत्न है, कितनी मेहनत है वो की जाती है। तो इसके हमने कहानी तो पूरी पढ़ ली थी, इसके प्रश्नोत्तर बचे थे, तो आप लोग पेज नंबर 15 पर आ जाइए। यहाँ पेज नंबर 15 पे शुरू करते हैं। प्रश्न एक, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने को सारे लोग बहुत चिंतित थे, तो ये किस चीज को दिखा रही है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता है या जो बदहफाजी या फिक्र जो दिखाई देती है वह दिखाती है कि भारतीयों की सोच अभी भी गुलाम वाली है, उनकी मानसिकता अभी भी वही गुलाम वाली है, वो औपनिवेशिक सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जॉर्ज पंचम की शान पे कुछ बात आ गई तो ये बात हमारी बात पर, मतलब हमारी शान पर भी आ जाएगी कि एक अंग्रेज की इज्जत हम नहीं बचा पाए, मतलब हमारी भी कोई इज्जत नहीं है। जो अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किए थे, जो हमको लूटा था, वो सारी चीजें हम भूल नहीं पाए हैं, और उन्हीं को याद करके हम क्या दिखाते हैं, मतलब ये जो सरकारी तंत्र है हमारे भारत का, वो क्या दिखा रहा है कि कितने हम अयोग्य हैं, कितने मूर्ख हैं और कितने बड़े चापलूस हैं। ठीक है, कितने अयोग्य हैं, मूर्ख हैं और चापलूस हैं। तो मुख्य चीज आपको जो यहाँ लिखनी है वो है औपनिवेशिक मानसिकता और गुलामी वाली सोच। प्रश्न दो देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो क्यों परेशान था, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसीलिए परेशान था क्योंकि उसको रानी की वेशभूषा तैयार करनी थी, उसे यह तय करना था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल तीनों देशों में अलग अलग समय पर रानी क्या पहनेंगी, और उनकी जो पोशाक है वो उनकी शान के अनुसार होनी चाहिए। अब ये तर्कसंगत थी या नहीं परेशानी, इसको आप ऐसे बताएंगे कि दर्जी की ये परेशानी बिल्कुल तर्कसंगत थी, क्योंकि रानी जो थी वो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करती ना, उनकी रानी आ रही है तो उनकी पोशाक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उसमें सम्मान, उसमें सजावट नहीं दिखेगी, शान नहीं दिखेगी, तो वो उनके देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर रानी की पोशाक अच्छी नहीं होती तो इससे उन्हें लगता कि वहां के देश का मान जो है वो घट गया है। रानी को अपने अनुसार, अपने अवसरों के अनुसार, अपने दौरों के अनुसार, जगह के अनुसार कपड़े कैसे पहनने हैं ये दर्जी को तय करना था। और अगर रानी को उसकी वेशभूषा या कपड़े तैयार नहीं मिलते या अच्छे नहीं लगते तो उस रानी को क्रोध आता, और ये सारी चीजें दर्जी को झेलनी पड़ती, इसीलिए जो दर्जी था वो परेशान था। ठीक है, प्रश्न तीन पर आइए, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? आपको ये बताना है नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो आपको क्या लिखना है, नई दिल्ली की जो टूटी फूटी सड़कें थी उनको सही किया गया होगा। ठीक है, पॉइंट्स में बता रही हूँ, आप अपने अनुसार चाहे तो इसे बिंदु के द्वारा लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, या फिर अनुच्छेद बना के भी लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ। तो पहला आप पॉइंट लिखेंगे, नई दिल्ली की जो टूटी फूटी सड़कें थी उनको ठीक किया गया होगा। सारे शहर के गड्ढे जो होंगे वो भरे गए होंगे। हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया होगा। पर्यटन स्थल जो हैं, जो घूमने की जगह हैं, वहां पे सफाई करना, उनके रंगाई पोतन और सुधार करना, वो सारी चीजें भी देखी गई होंगी। फिर पानी और बिजली की जैसी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान किया गया होगा, है ना। सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए होंगे। इसके साथ ही जो इमारतें हैं उनको अच्छे तरीके से साफ किया गया होगा, नए तरीके से रंगा गया होगा, नए नए रंग लगाए गए होंगे, लाइट्स लगाई गई होंगी शहर में, इमारतों को दुल्हनों की तरह सजाया गया होगा, इमारतों पूरे दिल्ली शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा, उसका श्रृंगार किया होगा, यानी कि जो भी चीजें की गई, काया पलट कर दी गई। एक पुराना शहर जो था जिसमें गंदगी थी, प्रदूषण था, उसको कम करने की कोशिश की हो गई, गंदी सड़कों को साफ करना, गंदे नदी तालाब को साफ करना, पानी की व्यवस्था सही करना, बिजली 24 घंटे देना और टूटी हुई सड़कों को जोड़ना, पर्यटन स्थल को सुधारना, सुरक्षा के इंतजाम करना, कुछ ऐसी वैसी घटनाएं ना हो, रानी आ रही है, सब कुछ सही से है। तो ये सारी चीजें जो की गई थी और दिल्ली शहर को जो दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, इससे हम कह सकते हैं कि दिल्ली का कायापलट कैसा हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 4 पर। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। ठीक है, आज की जो पत्रकारिता है, यानी जो न्यूज हम पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, उसमें क्या चीजें ज्यादातर मिलती हैं, जो चर्चित हस्तियां हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेट खेलता है, या कोई हीरो हीरोइन है, नेता है बड़े बड़े, इनके बारे में ऐसी फिजूल की खबरें दी होती हैं जिसका शायद हमारी ज्ञान से कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानना चाहते वो किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आदतें हैं, कहाँ घूमते हैं, कहाँ पार्टी करते हैं, ये सारी चीजें दी गई होती हैं। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं, दो प्रश्न है इसमें। क है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है, मतलब आपको क्या ये पत्रकारिता जो है वो सही लगती है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, आज की जो पत्रकारिता है जिसमें चर्चित हस्तियों की आदतों के बारे में, उनके खान पान, रहन सहन, पहनावे आदि के बारे में जो बताते हैं, यह पत्रकारिता हमें सही नहीं लगती है। ठीक है, सही क्यों नहीं लगती है, क्योंकि हमें लगता है ये सारी जानकारी जो हमें मिल रही है ये अनावश्यक है, है ना। ये पत्रकारिता ऐसी है जो लगता है कि अपनी राह भटक गई है, इसको जहां जाना था, जो इसकी मंजिल है वहां नहीं जा रही है, राह भटक गई है, ऐसी पत्रकारिता है। और दूसरा दोष इसका ये है कि जैसे जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो नए कम उम्र के लड़के हैं, लड़कियां, उन्हें फिर क्या हो रहा है, इस झूठी चकाचौंध की दुनिया की तरफ एक आकर्षण पैदा होता है, है ना। उनको लगता है कि जैसे लड़कियों को क्या लगता है, इस हीरोइन ने ऐसी ड्रेस पहनी तो मुझे भी ऐसी ही लेनी है, ऐसे बाल कटवाए हैं मुझे ऐसे कटवाने हैं, लड़कों को लगता है ये ऐसे बॉडी बना रहा है मुझे बनाना है, मतलब इस सब चीजों में लग जाते हैं। उनका जो उद्देश्य है, जीवन का कोई लक्ष्य है, पढ़ाई, ये सब चीजें इसमें फिर वो अच्छी तरह से उसे कर नहीं पाते। और ये जो पत्रकारिता, ये चकाचौंध की दुनिया है, ये जो गपशप है फिल्मी, ये उनको उनके लक्ष्य में बाधा बनती है। हमारा देश पत्रकारिता को बहुत अहम मानता है, बल्कि हमारा देश क्या, कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसके लिए पत्रकारिता एक स्तंभ की तरह होती है। और जब यही स्तंभ ऐसे भटकने लगे, निम्न स्तर का होने लगे, गिरने लगे, तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो फिर उनका विश्वास हट जाएगा, चीजें इधर उधर होने लगेंगी, पूरे समाज की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो सकती है। और वैसे भी आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में कि उन्होंने ये कपड़े पहने, ये खाना खाया, ये आदत है, यहाँ गए वहां गए, ये सारी चीजें, इससे आम आदमी को क्या मतलब है? आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है ना। उसको वो चीजें पता चलनी चाहिए कि जो उसके लिए आवश्यक है, जैसे कौन सी योजनाएं सरकार ला रही है, कौन सी घटनाएं देश में घटित हो रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, देश उन्नति कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। तो एक तो ये कारण हो गया, इस वजह से ये पत्रकारिता सही नहीं लगती। दूसरा कारण यह है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें हम ये मानते हैं कि जो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के निजी जीवन में ताक झांक ना करें या उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, है ना। और अगर हम ये पत्रकारिता कर रहे हैं कि किसी का पूरा जिंदगी, पूरे दिन का रूटीन हम सामने खोल के रख दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। उसकी भी अपनी कोई निजी पर्सनल लाइफ है, निजी जीवन है उसका, कुछ चीजें वो छुपा के रखना चाहता हो, कुछ चीजें वो छुपा के रखना चाहता हो लेकिन समाज उसे, समाज के सामने प्रस्तुत कर देना, तो ये तो गलत हो जाता है ना। इस तरीके से ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के भी खिलाफ है। और क्योंकि आम आदमी को ये सब कोई जरूरी नहीं लगता, इसलिए वो अनावश्यक पत्रकारिता है। और युवा पीढ़ी के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब इसी का ख पाठ देखें। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? अब आपको ये बताना है कि पत्रकारिता अच्छी है या नहीं, ये तो आपने बता दिया। अब आपको ये बताना है कि युवा पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी जो पत्रकारिता होती है उसका आम जनता पर प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है। ठीक है, आम जनता पर प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है, खास तौर पर युवा पीढ़ी पर ये प्रभाव नकारात्मक तो होता ही है, साथ ही बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि ये जो चकाचौंध की दुनिया है, इसमें खो जाते हैं लोग, है ना, जो बच्चे हैं, नए नए नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो खो जाते हैं, चकाचौंध के पीछे भागने लगते हैं, झूठे आकर्षण की ओर भागते हैं, एक भ्रम जाल में जीने लगते हैं और अपने जो लक्ष्य, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं, उन रास्ते पे जाते ही नहीं है, और अलग अलग तरह की फिर समस्याओं में फंसने लगते हैं। जैसे कुछ लोग, बच्चे नशे की आदत डाल देते हैं, कुछ फैशन के चक्कर में इतने बर्बाद कर लेते हैं खुद को कि उन्हें सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहता है। तो ऐसी चीजें आपको नकारात्मक प्रभाव और हानिकारक प्रभाव दिखा सकते हैं, जबकि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके राष्ट्र के हित में हो, और राष्ट्र के हित में यानी नागरिकों के हित में हो। और युवा पीढ़ी, हमारा भारत देश युवाओं का देश माना जाता है, अगर यहाँ के युवाओं को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो आप राष्ट्र की उन्नति की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, है ना। आप राष्ट्र की उम्मीद की, मतलब उन्नति की उम्मीद तभी करेंगे जब आप यहाँ के नवयुवकों को, नवयुवतियों को आगे बढ़ने में सहायता देंगे, और इसमें पत्रकारिता बहुत ही अहम किरदार निभाती है। अगर पत्रकारिता चाहे तो युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छी शिक्षा भी दे सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए। जॉर्ज पंचम, पांचवें प्रश्न पे हैं बच्चों हम लोग। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? अब जो बात की गई थी कि इस मूर्ति की नाक लगनी है दोबारा, उसके लिए क्या प्रयत्न किए गए, तो आप लिखेंगे जॉर्ज पंचम की लाट को या मूर्ति को जब नाक लगाने की बात चली तो मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब बनी थी और कौन से पत्थर से बनी थी। उसने कहा जब इसके पत्थर का पता चल पाएगा तभी मैं इसकी नाक बनाकर लगा पाऊंगा। और फिर उसने पूरे देश में यहां वहां जाके ढूंढा लेकिन वो पत्थर नहीं मिला, और उस अंततः उसे पता चला कि ये जो पत्थर जिससे मूर्ति बनी है वो विदेशी है। ठीक है, तो इस फिर यहाँ इस योजना को यहीं पे छोड़ दिया गया। दूसरी योजना बनाई गई कि हमारे देश के जो महान लोग हुए हैं, शहीद लोग हुए, जो नेता हुए हैं, उनकी नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया जाएगा। लेकिन ये योजना भी जो थी वो विफल हो गई, क्योंकि जो मूर्तिकार था उसने नापी थी किसकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, और उससे सारी ही मूर्तियों की, जो हमारे देश के शहीद जवान हैं या नेता हैं, महान व्यक्ति हुए, सभी की नाक उनसे लंबी थी। फिर बिहार में 1942 में कुछ शहीद बच्चे हुए थे, उनकी मूर्ति थी, उसकी भी मूर्ति की नाक तोड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चों की, सोची बच्चों की नाक आ जाएगी, लेकिन बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी निकली। यहाँ पे लेखक ने व्यंग्यात्मक तरीके से यह दिखाया है कि जॉर्ज पंचम यानी एक अंग्रेज व्यक्ति से हमारे देश में सबकी नाक ऊंची थी, यानी हमारी, क्योंकि नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक माना जाता है, सम्मान का सूचक माना जाता है। इसीलिए उनमें ये दिखाया कि जो हमारे देश के बच्चे बच्चे या कोई भी महान नेता या शहीद व्यक्ति हैं, उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और ज्यादा है भी। और अंत में क्या निर्णय किया गया, क्या योजना बनाई गई कि मूर्ति के लिए एक जिंदा नाक लगाई जाएगी। मतलब इतनी ज्यादा अहमियत हो गई इस मूर्ति की कि एक जिंदा आदमी को कुर्बान कर देना भी कुछ बड़ा नहीं समझा गया। अब प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 पर आइए आप लोग। अब आप पेज नंबर 16 पे हैं, ठीक है, पेज नंबर 16 पे हैं। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो आपको इसमें क्या बताना है, पाठ में जो ऐसे वाक्य आए हैं जो दिखाते हैं कि लेखक ने व्यंग किया है या फिर हमारी सरकारी व्यवस्था पर कटाक्ष किया है या व्यंग किया है, वो आपको लिखने हैं। दो इन्होंने उदाहरण दिए गए हैं कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं और दूसरा सारे हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। तो ऐसे ही कुछ वाक्य मैं आपको बता दे रही हूं, लेकिन आप चाहें तो अपनी तरफ से ढूंढ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला एक वाक्य है, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। तो इसमें क्या है, क्या हुआ कि पता नहीं चला किसने किसको आदेश दिया, ना किसी ने साफ करते देखा, लेकिन रात को जब सोए तो सब गंदा था और सुबह उठे तो वही गंदी सड़कें साफ हो चुकी थी। तो एक सेंटेंस आप लिखेंगे, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, ठीक है, एक चीज। दूसरा आप लिखेंगे, सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी यहाँ पे क्या व्यंग है कि वो जो सभापति है, जो सरकारी अफसर है, वो खुद मान रहा है कि हाँ, हम अपनी संस्कृति को छोड़ के विदेशी संस्कृति को अपना चुके हैं, सारी विदेशों की चीजें हमने, उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, पहनने का, सब कुछ हमने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, उन्हीं की तरह करना शुरू कर दिया। तो कह रहा है, जब सब कुछ उनकी तरह कर रहे हैं तो उनका पत्थर कौन सा मिलने बड़ी बात है, विदेशों की जब सारी चीजें हम अपना रहे हैं तो उनका पत्थर भी ले सकते हैं। तीसरा एक और सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी जिसमें लेखक का करारा व्यंग दिखेगा। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्या अव्यवस्था दिख रही है कि इतनी जरूरी हो गई है एक अंग्रेज की, वो भी सिर्फ मूर्ति की, नाक लगाना कि आप जिंदा आदमी की नाक काट दे रहे हैं, इससे ज्यादा नीच सोच तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो आपको लिखना है कि हाँ, नाक को हमेशा से ही मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा जैसे शब्दों से जोड़ा जाता रहा है। ये किसी भी व्यक्ति की इज्जत का प्रतीक होती है और इसी वजह से नाक को लेकर कई मुहावरे भी बने हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल है, नाक रगड़ना, ऐसी चीजें भी प्रचलित हैं। और इन सारी चीजों में ये पता चलता है कि नाक को सम्मान से जोड़ा जा रहा है। पाठ में भी कई जगह नाक को इज्जत, सम्मान या प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है और ये बात लेखक ने कई बार व्यक्त की है। जैसे रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पर आ रही थी, ऐसे में जॉर्ज पंचम की नाक ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था, है ना। दूसरी चीज, विदुषियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं हम लोग, है ना। यहां तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। यानी जो भारत के लोग हैं उनकी नाक ऊंची थी जॉर्ज पंचम की नाक से, यानी उनका सम्मान जो है वो जॉर्ज पंचम से ज्यादा बड़ा था, उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम से ज्यादा बड़ी थी। प्रश्न 8 देखिए, जॉर्ज पंचम की लाठ पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो आप लिखेंगे भारत के जो महान नेता हुए हैं या जो साहसी शहीद बच्चे थे उनके प्रति लेखक ने अपनी श्रद्धा, अपना स्नेह व्यक्त किया है। वह बताता है कि समाज में आदरणीय लोग हैं, इन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी है और इसीलिए इनका जो स्थान है वो जॉर्ज पंचम से कई गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत के लिए कुछ नहीं किया लेकिन इन बच्चों ने और नेताओं ने बलिदान भी दिए, त्याग भी दिए और भारत की सेवा भी की, इसीलिए इनकी नाक यानी इनकी इज्जत, इनका सम्मान जॉर्ज पंचम से ज्यादा बड़ा, ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 पे आइए। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो आप लिखेंगे अखबारों ने इस बात पर तो ध्यान नहीं दिया कि नाक का इंतजाम कहां से किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना छापा कि नाक का जो मसला है, जो समस्या थी वो सुलझ गई है और इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाठ पर नाक लग गई है। इसके साथ ही एक जगह ये भी छापा था कि वो नाक इतनी अच्छे से लगाई गई है कि बिल्कुल असली लग रही है। इसके अलावा अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह या अन्य कोई खबर छपी, सिर्फ इतनी बात दी गई क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीजें हैं वो गलत हुई हैं, तो बस इतना ही छापा कि नाक लग गई है लेकिन क्यों, कैसे, कहां, वो सारी जानकारी नहीं दी गई। प्रश्न 10 देखिए, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो आप क्या लिखेंगे, नई दिल्ली जो कि हमारे भारत की राजधानी थी और आज भी है, उससे इसमें ये लेखक बताना चाह रहा है कि रानी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ आने वाली थी भारत तो सारी तैयारियां चल रही थी और चूंकि दिल्ली राजधानी थी तो वहां पे विशेष तौर पे तैयारियां चल रही थी, उसमें साफ सफाई करवाई जा रही थी, सजावट करवाई जा रही थी, कोई भी सुख सुविधा में कमी ना आए इसकी व्यवस्था की जा रही थी, सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही थी, सारी व्यवस्थाएं पूरी थी, सारी तैयारियां पूरी थी, कमी थी तो बस किस चीज की, जॉर्ज पंचम की नाक की, जो कि किसका प्रतीक है पाठ में, अंग्रेजों की इज्जत का या अंग्रेजों के मान सम्मान का। तो उसमें ये लेखक ने यही बताया है कि दिल्ली में तैयारियां तो सारी थी लेकिन दिल्ली में जॉर्ज पंचम की इज्जत नहीं थी। और ऐसा क्यों था, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना अब उनका शासन खत्म हो चुका था और यहाँ पे जो उन्होंने अत्याचारी शासन किया था तो लोगों के मन में एक रोष था ना, एक क्रोध था उनके प्रति, और अब वो उस शासन के प्रति इज्जत का भाव, सम्मान का भाव नहीं रख सकते थे, उनको क्रोध था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने पहली बात तो भारत को लूटा, फिर अत्याचारी शासन किया यहाँ पे, लोग यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, तड़पाया, शोषित किया, अपनी मनमर्जी चलाई, तो ये जो शासन था अब इसके लिए क्यों सम्मान होता है, यहाँ पे लोगों की जनता, भारत की जनता में क्यों सम्मान होता, लोगों के मन में ये था कि ये जो शासन है खत्म हो गया, अच्छी बात है, हमें इसके प्रति क्रोध है, रोष है, घृणा है, सारे ऐसे भाव थे। इसके साथ ही एक और चीज ये पता चलती है कि हमारा जो प्रशासन है वो आजादी की बात भी कितना त्रुटिपूर्ण है, कितना कमजोर है, उसमें हजारों त्रुटियां देखी जा सकती हैं, है ना। जैसे अभी भी हम अपनी इज्जत से पहले किसकी, एक अंग्रेज की मूर्ति की इज्जत की फिक्र कर रहे हैं, और इस काम के लिए कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा आदमी की नाक तक काट दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा आदमी की कीमत को भी हम कम नाप रहे हैं एक मूर्ति से, मूर्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये जो है यहाँ के लोगों की जो कमजोर सोच है, औपनिवेशिक सोच है, इसको भी यहाँ पे लेखक दर्शा रहा है। अब प्रश्न 11 पे आते हैं, अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। कहानी के अंत में आया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई थी, ये खबर भी छपी अखबार में, लेकिन अखबार जो थे शांत थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए, एक दिखावा करने के लिए, जिंदा इंसान की नाक काट के जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाती है। यह बात किसी को भी पसंद नहीं आती है और अखबार इसके विरोध करना चाहते हैं। दो हिस्से हैं यहाँ पे कि वो इसका विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं। ठीक है, पहली चीज है, आप दो पॉइंट्स में लिखेंगे कि अखबार कुछ भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो विरोध करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि जो काम किया गया है वो सही नहीं है, वो गलत है, इसीलिए चुप थे। दूसरा कारण ये है कि अगर अखबार जो है वो छाप देते, ये खबर छप जाती कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे जो नाक लगी है वो जिंदा नाक है, किसी जिंदा व्यक्ति की असली नाक काट के लगा दी गई है, तो पूरी दुनिया में जो भारत है उसकी बदनामी होती, लोग क्या कहते, ये सोचकर भी, यानी दो कारणों की वजह से ये खबर नहीं छपी थी। और कहीं ना कहीं ये बात सबको पता चल जाती कि आजादी के बाद भी जो दिल्ली के प्रशासन के लोग हैं वो अभी भी अंग्रेजों को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके आगे दुम हिलाते घूमते हैं, उनकी गुलामी से वो उभर नहीं पाए हैं। क्योंकि कहने को तो देश आजाद हो गया है, है ना, अंग्रेज हम पे जो मनमानी करते थे वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के जो डर है, है ना, उनके प्रति जो ये चापलूसी जो लोग करते थे वो उनके अंदर से नहीं खत्म हुई, वो उनके गुलाम बने रहना चाहते हैं, चापलूसी करना चाहते हैं, डरना चाहते हैं कि हाँ आप ही सब कुछ हैं, आपकी इज्जत हमसे बढ़कर है। यही बात हमारा प्रशासन पेश करता है और जिंदा इंसान की नाक कटवाने को तैयार हो जाता है, लेकिन चाहता है कि मूर्ति की नाक लग जाए ताकि रानी जब आए तो ये दिखावा हो सके कि हाँ जो तुम्हारा सम्मान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने पूरी तुम्हारी फिक्र की है, तुम्हारे सम्मान का हमने कद्र की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये 11 के 11 प्रश्न पूरे होते हैं, साथ ही आपका पाठ भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये पाठ हमने पढ़ा जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक थे कमलेश्वर जी, है ना। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ा कि कैसे जॉर्ज पंचम, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसकी मूर्ति पर नाक लगाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, प्रशासन कितना हमारा कमजोर है, गुलाम है अभी भी अंग्रेजों का, सोच कितनी नीची है। अब जैसा कि हमने पाठ तो पूरा कर लिया है, तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि शुरू में हमने लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो एक दो बार मैं आपको कमलेश्वर जी के बाद थोड़ा सा फिर से याद दिला देती हूँ ताकि आप भूल ना जाए। हमने क्या पढ़ा था कि कमलेश्वर जी का जन्म 1932 यानी 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था, है ना। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी, उसके बाद दूरदर्शन में इन्होंने काम किया था, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, खासकर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और सारिका जैसे पत्र पत्रिकाएं। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आज भी बहुत ही प्रचलित समाचार पत्र हैं। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिर 27 जनवरी 2007 यानी 27 जनवरी 2007 को इनका निधन हो गया था। इनका निधन क्यों हुआ था? दिल का दौरा पड़ने से, यानी हार्ट अटैक आने से इनका निधन हो गया था। इनके कुछ मुख्य रचनाएं थी, पहले कहानियां जानते हैं, राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 चतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये कहानी संग्रह है। और उपन्यास है इनके वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, इसके साथ ही इन्होंने कई फिल्मों के लिए टीवियों के लिए भी कहानियां लिखी हैं, है ना। और इन्होंने ये बताया है कि जो महानगर बड़े बड़े शहर बन रहे हैं तो इंसान की प्रवृत्ति कैसे बदल रही है ना। वो अकेला हो गया है, इसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है, परिवेश जो बदल रहा है इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सारी चीजें उनकी रचनाओं में हमें देखने को बखूबी मिलती हैं। इसके साथ ही आपका ये जो पाठ है वो पूरा हो गया। अब हम मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।